ऊपरी मंजिल पर हल्की रोशनी थी, दीवारों पर उकेरे गए पुराने डिजाइन, भारी पर्दे और धीमी हवा सब मिलकर उस हिस्से को और भी अकेला और ठहरा हुआ बना रहे थे। मधु, जो इस हवेली की सबसे पुरानी और भरोसेमंद नौकरानी थी, हाथ में एक छोटी सी ट्रे लिए सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। हर कदम के साथ उसके दिल में एक ही ख्याल था, कितनी चुप लड़की है ये, बिना बोले कितना कुछ कह जाती है। कमरा अब भी वैसे ही बंद था। दरवाजे के बाहर खड़ी मधु ने एक बार दस्तक दी, फिर धीरे से आवाज लगाई, बहू जी। अंदर कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर धीमे धीमे दरवाजा खुला। श्यामली सामने थी, लाल जोड़े के बिना अब हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, बाल खुले हुए लेकिन थके, उलझे और बिखरे हुए। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि जागे हुए सवाल थे। मधु मुस्कुराई, बहू जी, माताजी ने भेजा है, खाना लगाने को कहा है, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। श्यामली ने कुछ पल मधु को देखा, फिर बहुत धीमे से पूछा, वो आए क्या? मधु जरा झिझकी, सवाल सीधा था, जवाब मुश्किल। वो झूठ बोल सकती थी, पर श्यामली की आंखों में ऐसा सन्नाटा था जिसे धोखा देना आसान नहीं था। मतलब साहब, मधु ने थोड़ा समय खींचने की कोशिश की। श्यामली ने बस सिर हिला दिया, आवाज अब भी शांत थी मगर उसकी गूंज अंदर तक थी। हाँ विश्वनाथ जी, वो घर आए क्या? मधु ने जरा नजरें झुका ली, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, अभी नहीं बहू जी, पर आते होंगे, साहब जब काम में लग जाते हैं तो देर हो ही जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, थोड़ी देर और लग सकती है बस। श्यामली की नज़र एक पल के लिए फर्श पर टिक गई, फिर उसने बिना किसी शिकवे या हैरानी के कहा, मैं खाना उनके साथ ही खा लूंगी, आप बताना जब वो आ जाएं, मैं यहीं हूँ। मधु ने जरा घबरा कर कहा, बहू जी वो आने में वक्त लग सकता है, आप ऐसे भूखे मत रहिए, माता जी भी कह रही थी कि आप खाना खा लें, थक गई होंगी, रस्मों का दिन बहुत भारी होता है। श्यामली मुस्कुरा दी, एक सूनी फीकी मुस्कान। आप नहीं समझेंगी मधु दीदी, खाना थकान के बाद खाया जाता है, पर जब मन थका हो और दिल भरा हो तो भूख भी अंदर कहीं छुप जाती है। मधु पहली बार चौंक गई, उसने बहू को अब तक चुप, सहमी, धीमी लड़की समझा था, लेकिन अब पहली बार महसूस हुआ इस चुप्पी के नीचे बहुत कुछ जिंदा है, बहुत कुछ बोलता है। मधु ने एक कदम आगे बढ़कर बड़े अपनापन से पूछा, बहू जी आप नाराज हैं उनसे? श्यामली ने आंखें उठाई, कुछ पल बाद बोली, नहीं, नाराज होने का हक तो तब होता जब कोई रिश्ता हो, यहाँ तो बस एक नाम जुड़ा है, पति पत्नी का, रिश्ता तो शायद उनसे बना ही नहीं, या उन्होंने बनने ही नहीं दिया। उसकी आवाज़ कांपी नहीं, लेकिन उसमें वो थकावट थी जो सालों की लड़ाई के बाद आती है। मधु ने धीरे से ट्रे पास रख दी, आपने कुछ खाया नहीं बहू जी, पानी भी नहीं लिया, ये ठीक नहीं। श्यामली ने धीरे से कहा, मुझे आदत है इंतजार की, पहले पापा का इंतजार करती थी जब वो देर से लौटते थे, फिर माँ का जब वो अस्पताल में थी, अब ये नया इंतजार है, बस रिश्ता बदल गया है, आदत नहीं। मधु की आंखें नम होने लगी, वो अब तक एक सेविका थी, अब एक माँ की तरह महसूस कर रही थी। बहू जी साहब वैसे ही हैं जैसे आप देख रही हैं, पर ये मत सोचिए कि आप अकेली हैं इस घर में। श्यामली ने मधु की तरफ पहली बार नजर भर कर देखा, उस नजर में अपनापन नहीं लेकिन एक शून्य भरोसा था। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर मधु बोली, मैं नीचे बता देती हूँ माता जी को कि आप नहीं खा रही हैं अभी। श्यामली ने धीरे से सिर हिला दिया, मधु ने ट्रे उठाई, दरवाजा खोला, फिर एक पल को रुक गई, पीछे मुड़कर बोली, अगर किसी दिन बहुत ज्यादा थक जाओ तो सिर्फ आवाज दे देना, मधु दीदी पास ही रहती है। श्यामली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। मधु सीढ़ियां उतरती हैं, नीचे माँ इंतजार में बैठी होती हैं, क्या बहू आ रही है? मधु ने सिर हिलाया, नहीं माता जी, कहती हैं जब साहब आएंगे तब खाएंगी। माँ की आंखों में दर्द उतर आया, दूसरे ही दिन से ये इंतजार शुरू हो गया, जाने और कितनी रातें यूं ही गुजरेंगी।